नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को शामिल नहीं किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट नामक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस पुस्तिका में अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्गों के लिए उपक्रम पूंजी कोष और आम्बेडकर सामाजिक नवाचार और इंक्यूबेशन मिशन के तहत प्राप्त सहायता से सफल उद्यमियों और नवोन्वेषकों की प्रेरणादायी कहानियां हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रॉड्रिक्स आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेलसी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं के नाम रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।